अगले दिन सुबह जब अरुणिमा की आंख खुलती है तो वो अपने पूरे बदन में एक दर्द का अनुभव कर पा रही थी। कल पूरी रात जो आस्तिक ने उस पर अपना प्यार बसाया था, अरुणिमा उसके हर एक एहसास को इस वक्त अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। अरुणिमा उठते हुए मुस्कुरा देती है और एक अंगड़ाई लेती है। तभी उसका ब्लैंकेट उसके सीने से गिर जाता है और अरुणिमा ने एहसास किया कि वो इस वक्त बिना कपड़ों के है। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और हैरानी से उस कमरे को देखने लगी। ये कमरा पूरी तरह से खाली था, आस्तिक वहां नहीं था। फूल जो कल रात इस कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे वो हल्के मुरझा गए थे और फेरी लाइट भी बंद हो गई थी। खिड़की से आई रोशनी ने उसे पूरे कमरे को रोशन किया हुआ था। अरुणिमा मुस्कुरा जाती है। उसने धीरे से अपना पैर नीचे जमीन पर रखा। हालांकि उसके बदन में दर्द का एहसास था, लेकिन फिर भी एक मीठा मीठा एहसास उसे अपने मन के अंदर भी महसूस हो रहा था। जैसे ही वो उठने को होती है, साइड टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जो आस्तिक ने लिखा था। उसने मुस्कुराते हुए उस नोट को उठाया और उस पर आस्तिक का मैसेज लिखा हुआ था। तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, मैसेज रायचंद, इसीलिए बाहर आने से पहले कपड़े पहन लेना। अरुणिमा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने बेडशीट से खुद को ढके हुए ही अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। उसने अलमारी खोली तो वहां पर उसके लिए पहले से ही कपड़े मौजूद थे। एक कंफर्टेबल ड्रेस निकालकर उसने उसे पहन लिया और उस ड्रेस को पहनकर जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आती है, अचानक से उसका हाथ उसके बेबी बंप पर चला जाता है। उसका पेट हल्का निकल आया था। जाहिर सी बात है, उसकी प्रेगनेंसी को दूसरा महीना पूरा होने को आया था। ऐसे में उसका पेट निकलना स्वाभाविक है। अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे मालूम था कि अब आस्तिक उस पर भरोसा करता है और वो भी आस्तिक पर भरोसा करती है। कल रात उन दोनों ने एक वादा साथ में किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। इसीलिए अरुणिमा को अब देर नहीं करनी चाहिए। अपनी ड्रेस की डोरी को थोड़ा सा ढीला करते हुए उसने अपने बेबी बंप को कवर करना शुरू किया और वो उस कमरे के केबिन से बाहर निकलती है। बाहर एक चिलमिलाती हुई धूप और मीलों तक का समंदर उसका इंतजार कर रहा था। अरुणिमा ये देखकर मुस्कुरा जाती है। उसने आसपास देखा तो शिप पर मौजूद कैप्टन एक तरफ खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो अरुणिमा ने भी बदले में अपना सर झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसके बाद अरुणिमा उस तरफ चली जाती है जहां पर कैप्टन खड़ा था। जैसे ही वो वहां जाती है, उसने देखा आस्तिक सामने ही खड़ा है। उसने एक व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, लेकिन उसके शर्ट के बटन खुले हुए हैं और वो दूरबीन से समंदर में कुछ देख रहा था। अरुणिमा आस्तिक के पास जाती है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेती है। आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों से दूरबीन हटाई और पलट कर वो अरुणिमा को देखता है। तब तक शिप का कैप्टन वहां से जा चुका था और आस्तिक और अरुणिमा अकेले थे। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में भरा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तो तुम्हें कल रात नींद कैसी आई? इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और सो जाती? अरुणिमा ने उसे एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा और बोला, नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई है। पर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अब ये मत कहना कि तुम्हें मीटिंग पर जाना है। इस बीच समंदर में तुम्हें मीटिंग पर जाना भी होगा तो जाओगे कैसे? तैरकर? आस्तिक की हंसी छूट जाती है। अरुणिमा उससे मजाक कर रही है। वैसे अरुणिमा ने इससे पहले ऐसा मजाक कभी नहीं किया है, लेकिन उसे फिर भी मजा आया। वो अरुणिमा के माथे को चूमता हुआ कहता है, नहीं, मैं बस शिप का जायजा ले रहा था कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, और मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा था कि तुम कब जाओगी। चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे पेट में जो चूहे भूख के मारे तड़प रहे थे, अब वो लगभग मरने की कगार पर हैं। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाया। आस्तिक अरुणिमा को लेकर शिप के दूसरे हिस्से में चला जाता है, जहां पर ओपन में एक टेबल रखा हुआ था और वहां पर उनके ब्रेकफास्ट की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी। आस्तिक अरुणिमा के बीच चेयर खींचता है और अरुणिमा उस पर बैठ जाती है। आस्तिक प्यार से अरुणिमा को खिला रहा था। वो खुद कम खा रहा था और अरुणिमा को ज्यादा खिला रहा था। अरुणिमा बाहर इस खुले समंदर में क्रूज के ऊपर इस ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छे से मजा ले रही थी। उसका समय बहुत अच्छा जा रहा था। आस्तिक उसे अपना प्यार का और अपनेपन का एहसास करवा रहा था। अरुणिमा के लिए बिल्कुल सपने जैसा था और वो इस सपने को जी भी रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को एक निवाला खिलाने के बाद खुद एक निवाला खाया कि तभी उसका फोन बजने लगता है। उसने देखा तो ये उसकी कंपनी से कॉल थी और नीरज इस वक्त उसे कॉल कर रहा था। वैसे नीरज इस वक्त कॉल करता नहीं, क्योंकि आस्तिक ने उसे बताया था कि वो अरुणिमा को लेकर वेकेशन पर जा रहा था। ऐसे में नीरज गलती से भी ये करने की गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कॉल कर रहा है, इसका मतलब बात कुछ बड़ी है। तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं अभी आता हूँ। आस्तिक उठकर दूसरी तरफ चला जाता है और अरुणिमा ब्रेकफास्ट करते हुए उसे देख रही थी। आस्तिक दूर फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया था। उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो गुस्से में कुछ कह रहा था। समंदर की तेज आवाज की वजह से अरुणिमा को आस्तिक की बात तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी गुस्से में भी है। फोन काटने के बाद आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा के पास आ रहा था, लेकिन अरुणिमा देख सकती थी कि उसकी ये मुस्कान कितनी झूठी, नकली और बनावटी है। फोन आने से पहले जो आस्तिक उसके सामने बैठा हुआ था वो सच्ची मुस्कान के साथ और अरुणिमा के लिए एक सच्ची फीलिंग्स के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अब आस्तिक के चेहरे पर जो मुस्कान थी ये पूरी तरह से नकली थी। आस्तिक अरुणिमा के सामने बैठते हुए कहता है, अरे तुमने तो ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या, कुछ और मंगवाओ। अरुणिमा ने नामे सर हिलाया और कहा, नहीं मुझे कुछ और नहीं खाना है, बस इतना ही काफी है। वैसे किसका फोन था, तुम्हें यहाँ कौन फोन कर रहा है, वैसे हैरानी की बात है समंदर के बीचों बीच तुम्हें नेटवर्क भी मिल गया। आस्तिक अरुणिमा को देखकर हंसते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समंदर तो बहुत छोटी जगह है, कल को अगर मैं चांद पर भी चला गया ना तो मुझे वहां पर भी नेटवर्क मिल जाएगा। लेकिन फोन किसका था, तुम काफी परेशान नजर आ रहे थे, अरुणिमा ने पूछा तो आस्तिक ने बात बदलते हुए कहा, अब वो जरूरी नहीं है, वैसे तुमने मेरे हाथ का बना हुआ कभी ग्रिल चिकन खाया है, तुमने कभी खिलाया ही नहीं, अरुणिमा ने शिकायत के अंदाज में कहा। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उठता है और कहता है, कभी नहीं खिलाया तो आज खिलाता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो मैं सेटअप लगाता हूँ। अरुणिमा ने हाँ में सर हिलाया। आस्तिक वहां से दूसरी तरफ चला जाता है और वहां से चिकन को ग्रिल करने के लिए बाहर एक ओपन ग्रिल स्टैंड लगा रहा था। अरुणिमा दूर से आस्तिक को देख रही थी, वो देख रही थी कि आस्तिक कुछ करना तो चाहता है लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। बोर्ड के ऊपर ग्रिल स्टैंड को लगाते हुए अचानक से आस्तिक के हाथों में चोट लग जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। आस्तिक दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि सच में वो लोहा काफी नुकीला था और वो आस्तिक के अंगूठे से लेकर हथेली तक बहुत तेजी से चला था। आस्तिक के हाथ पूरे खून से भर गया था और अरुणिमा ने जब ये देखा तो वो चौंक कर खड़ी हो जाती है। वो जल्दी से आस्तिक के पास आती है।
आस्तिक क्या हो गया, रुको मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, अरुणिमा ने घबराते हुए कहा। लेकिन आस्तिक अपना हाथ झटकते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन अरुणिमा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और तुम मुझे आराम करने के लिए कह रहे हो।